जब वे कवि होकर अपने घर राजकन्या के पास लौटे तब घर का दरवाजा बंद था। उसे खुलवाने के अभिप्राय से इन्होंने संस्कृत में कहा कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि। तब विदुषी ने प्रश्न किया कि अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, आपकी वाणी में कुछ विशेषता आई? कालिदास की वाणी देवी के प्रसाद से निर्मल हो चुकी थी, इसलिए कवि ने अपनी पत्नी विद्युत्मा के प्रश्नभूत वाक्य के अंदर वर्तमान अस्ति कश्चित् और वाक् इन तीन शब्दों से आरंभ करके तीन काव्य बना डाले। अस्ति शब्द से आरंभ करके अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवात्मा अर्थात कुमार संभव महाकाव्य, कश्चित् शब्द से आरंभ करके कश्चित् कांता विरह गुरुणा अर्थात मेघदूत खंड काव्य, वाक् शब्द से आरंभ करके वागार्थावेव संप्रिक्तो अर्थात रघुवंश महाकाव्य। बाद विद्युत्मा को इस प्रकार पति को एक प्रतिभा संपन्न महाकवि के रूप में पाकर जैसा आनंद का अनुभव हुआ होगा वह लिखने के बाहर है। सुंदरी नारी मनुष्य के जीवन प्रवाह में मोड़ देकर सुधार सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तुलसीदास नारी की भर्त्सना से ही भक्त शिरोमणि बने। इसी प्रकार कालिदास और विक्रमादित्य तथा कालिदास और भोज के संबंध में भी कई किंवदंतियां विद्व समाज में प्रसिद्ध हैं, जिन्हें यहाँ लिखना भूमिका का कलेवर बढ़ाना उचित नहीं। कालिदास कब हुए, कहाँ हुए, किस वंश में हुए और उन्होंने कितने ग्रंथ बनाए इत्यादि प्रश्नों का अभी तक ठीक ठीक निर्णय नहीं हो पाया है, क्योंकि उन्होंने अपने संबंध में अनेक ग्रंथों के अंदर कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। फिर भी विद्वानों ने अनेक ग्रंथों के आधार पर अब तक जो कल्पनाएं की हैं उसी के आधार पर बराबर ही विचार होता आ रहा है। हेडिंग, कालिदास के ग्रंथ। किस कालिदास ने कौन से ग्रंथ बनाए हैं इसका निर्णय करना एक प्रकार से असंभव सा है, फिर भी अधिक आलोचकों तथा विद्वानों के मत में उज्जैनी नरेश महाराजा विक्रमादित्य की अभिरूप भूयिष्ठा सभा को अलंकृत करने वाले कालिदास के 8 ग्रंथ माने जाते हैं, 2 महाकाव्य, 1 कुमार संभव, दूसरा रघुवंश, 1 खंड काव्य अर्थात मेघदूत, 2 स्फुट काव्य ऋतु संहार और श्रृंगार तिलक और 3 नाटक, पहला अभिज्ञान शकुंतल, दूसरा मालविकाग्निमित्र, तीसरा विक्रमोर्वशीय। कुछ लोग नलोदय और श्रुतबोध को भी इन्हीं की कृति मानते हैं। राजसभा में रहते समय कालिदास ने अपनी प्रतिभा तथा समस्या पूर्ति से बड़े बड़े विद्वानों एवं अपने आश्रयदाता विक्रमादित्य को भी अनेकों बार चकित कर दिया था। कालिदास के ग्रंथों के अध्ययन से मालूम पड़ता है कि ये बड़े विनोदी थे। इनके सभी ग्रंथों में श्रृंगार रस की प्रधानता है, इसलिए राजशेखर ने कहा है, श्रृंगार रस के वर्णन में और मधुर शैली में एक कालिदास की बराबरी करने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। फिर 3 कालिदास को भिन्न भिन्न विषयों में परास्त करने वाला कहाँ मिलेगा। श्लोक, एको न जियते हंत कालिदासो न केनचित, श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी नुकिम। हिंदी, विद्वानों की परंपरा में अनेक कालिदास होने की बात प्रसिद्ध है। दशम शताब्दी में वर्तमान राजशेखर कवि ने अपनी काव्य मीमांसा के उक्त छंद में 3 कालिदासों का स्पष्ट उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त एकादश शताब्दी में राजा भोज के दरबार में भी एक कालिदास थे, इसका पता वल्लाल कवि प्रणीत भोज प्रबंध से लगता है। अनेक कालिदासों को देखकर कुछ आलोचकों ने यह भी माना है कि जैसे आद्य स्वामी शंकराचार्य की परंपरा पर चलने वाले आगे के सन्यासियों को शंकराचार्य कह दिया जाता, वैसे ही आदि कालिदास के समान कविता करने वाले कवि को भी कालिदास कहने लग गए थे। इसलिए संस्कृत में अनेक कालिदासों की उपलब्धि विभिन्न समयों में होती है। जो कुछ हो विद्वान लोग इस कल्पना को स्वयं समझ लें। हेडिंग, कालिदास की प्रसिद्धि का कारण। अन्य ग्रंथों के रहते हुए भी प्राच्य और पाश्चात्य देशों में कालिदास की इतनी महती प्रतिष्ठा का कारण अभिज्ञान शकुंतल है। जब कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सर विलियम जोन्स ने शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया तब उसे पढ़कर पाश्चात्य विद्वानों की आंखें खुली और कालिदास की कवि कल्पना पर मुग्ध होकर उन्होंने बड़े हर्ष के साथ कालिदास को भारतीय शेक्सपियर की उपाधि से विभूषित किया और संस्कृत की तरफ उनकी रुचि बढ़ी, यहाँ तक कि वेदों का भी छानबीन शुरू हो गई। देखिए पाश्चात्य विद्वानों की कैसी श्लाघनीय गुणग्राहिता है, इसी से वे इतनी शीघ्रता से इतनी उन्नति कर गए हैं। एक तरफ पाश्चात्य विद्वान हैं जिन्होंने अपने देश की कवियों की तो बात ही क्या है, कहीं के भी विद्वान के गुण प्रकाशन करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। दूसरी तरफ भारतीय विद्वान हैं जिन्हें इस दिशा में थोड़ी भी अभिरुचि नहीं है। खेद का विषय है कि पाश्चात्य अनुकरण करने में प्रवीण भारतीय विद्वानों में भी विशेष अभिरुचि नहीं। कालिदास ही क्या, महाराजा धीराज विक्रमादित्य भोज, भास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, बाणभट्ट और प्रातः स्मरणीय स्वामी शंकराचार्य आदि विद्वानों का वास्तविक स्वरूप ही भारतीय विद्वानों ने अभी तक नहीं समझा है। पाश्चात्य विद्वान इनका जो कुछ मूल्यांकन कर देते हैं उन्हीं के बल पर ये भी कुछ कहने लग जाते हैं। जहाँ विदेशों में एक शेक्सपियर की कृतियों की आलोचना की असंख्य पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और बराबर लिखी भी जा रही हैं, वहाँ भारतीय विद्वान मौनावलंबन में मस्त हैं। यह बड़े खेत का विषय है। हेडिंग: कालिदास की जन्मभूमि। इसी प्रकार कालिदास की जन्मभूमि तथा समय के संबंध में भी विद्वानों का बहुत बड़ा मतभेद है। वंगदेशी विद्वान इन्हें बंगाली मानते हैं और नवद्वीप को इनकी जन्मभूमि बतलाते हैं। बहुत विद्वान कहते हैं कि इनकी जन्मभूमि कश्मीर है, क्योंकि इन्होंने हिमालय का जैसा सुंदर वर्णन किया है वैसा दूसरे का नहीं। कुछ लोग इन्हें पंजाबी, कुछ लोग मालवी मानते हैं, किंतु विशिष्ट विद्वान इन्हें उज्जैनी वासी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने काव्यों में उज्जैनी के लिए विशेष पक्षपात दिखलाया है, जिससे इनकी जन्मभूमि उज्जैनी मालूम पड़ती है। इनके मेघदूत में कांता विरही यक्ष रामगिरी से सीधे उत्तर अलकापुरी जाने वाले मेघ के लिए रास्ता टेढ़ा होने पर भी सकल संपत संपन्न उज्जैनी को देखने के लिए मेघ से आग्रह करते हुए कहा है कि यदि तुम उज्जैनी के विशाल महलों और मृगाक्षी रमणियों के कुटिल कटाक्षों को देखने से वंचित रह गए तो तुम्हारा जीवन ही निष्फल है। श्लोक: वक्रह पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम सौधेत सक प्रणय विमुखो मास्मूभुरुज्जैन्याः विद्युद्दामस्फुरित चकितस्तत्र पौरांगनानां लोलापांगे यदि न रमसे लोचनैर विजयंतिसोसी। पूर्वमेघ 29वां श्लोक। मेघदूत में कालिदास ने उज्जैनी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का जैसा सूक्ष्म वर्णन करते हुए छोटी से छोटी नदियों का भी नाम निर्देश किया है, उनका जमकर वर्णन किया है वैसा अन्यत्र नहीं। इस प्रकार उज्जैनी के प्रति विशेष पक्षपातपूर्ण वर्णन तथा भौगोलिक परिचय के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि कालिदास उज्जैनी के ही निवासी थे। पर्वतों में हिमालय, नगरियों में उज्जैनी, देवताओं में शिव, अलंकारों में उपमा और छंदों में मंद्रा कांत्रा कालिदास के परम प्रिय हैं। इनका भौगोलिक ज्ञान बहुत ही समुन्नत है, जिसका पता मेघदूत, रघुवंश में रघु का दिग्विजय और इंदुमती के स्वयंवर में देश देश के राजाओं के वर्णन से स्पष्ट मालूम पड़ता है। कुमार संभव, मेघदूत और शकुंतला के वर्णन से स्पष्ट है कि इन्हें हिमालय तथा उत्तर भारत जितना प्रिय था उतना विंध्य तथा दक्षिण भारत नहीं। हेडिंग: कालिदास का समय। कालिदास के समय के संबंध में प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों में बहुत बड़ा मतभेद है। विभिन्न विद्वानों ने आंतरिक प्रमाणों के आधार पर कालिदास की सत्ता ईसा पूर्व प्रथम से लेकर छठी शताब्दी तक मानी है। इस संबंध में प्रधान रूप से दो मत हैं, एक प्राचीन और दूसरा अर्वाचीन। प्राचीन मत के पोषक संस्कृत के भारतीय विद्वान हैं और अर्वाचीन मत के अनुयायी अंग्रेजी के पाश्चात्य विद्वान तथा उनका अनुकरण करने वाले कुछ भारतीय। श्लोक: धनवंतरी छपण कामर सिंह शंकु वेताल भट्ट घट खर पर कालिदास ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभायाम रत्नानि वै वर रुचिर न विक्रमस्य। हिंदी: इस ज्योतिर्विदाभरण जनश्रुति के आधार पर भारतीय संस्कृत के विद्वान मानते हैं कि कविवर कालिदास विद्वत्प्रिय विक्रम संवत के प्रवर्तक उज्जैनी के राजा महाराज धीराज और विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक प्रमुख रत्न थे, जिनके बिना महाराज को एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता था। इनकी अद्भुत कवि कल्पना पर महाराज सदा मुग्ध रहते थे। कालिदास के ग्रंथों से भी विक्रमादित्य के दरबार में रहने का संकेत मिलता है। शकुंतला की प्रस्तावना में विक्रम की अभिरूपिष्ठा परिषद में विश्वविख्यात शकुंतला नाटक का अभिनय करने का संकेत है। विक्रमोर्वशी नाटक में यद्यपि राजा पुरुरवा नायक हैं, तथापि विक्रम का स्पष्ट नामोल्लेख है। अनुसेक खलु विक्रमालंकार इत्यादि वचनों से भी इसकी पुष्टि होती है कि कालिदास का विक्रम से संबंध अवश्य था। रामचंद्र महाकाव्य में तो स्पष्ट उल्लेख है कि शकराति और विक्रमादित्य ने कालिदास की बहुत बड़ी ख्याति थी। देखिए: ख्यातिम कामपि कालिदास कवयो नीतः शकरातिना, और शुभाषित में तो कहा भी गया है। श्लोक: वाल्मीकि प्रभवेण राम नृपतिर्व्यासेन धर्मात्मजः व्याख्यातः किल कालिदास श्री विक्रमार्को नृपः। हिंदी: इसलिए जब तक परंपरागत इन जनश्रुतियों के खंडन करने के लिए इसके विरुद्ध कोई प्रबल प्रमाण नहीं मिलता, तब तक न ही मूला जनश्रुति के आधार पर यह मानना सर्वथा न्यायसंगत है कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में एक महारत्न थे। पाश्चात्य विद्वानों में से केवल सर विलियम जोन्स महोदय ने भारतीय प्राचीन मत को ही प्रमाणित माना है और अंग्रेजी में शकुंतला का अनुवाद किया है। हेडिंग्स: कालिदास के संबंध में विभिन्न मत, इनके समय को लेकर। हमारा संस्कृत साहित्य विश्व साहित्य में सर्वसंपन्न और अगाध है। वेद वेदांग ब्राह्मण वांग्मय उपनिषद धर्मशास्त्र काव्य नाटक विविध विषयों के अनेकों ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं और अनेकों हस्तलिखित रूप वर्तमान हैं। इसके अतिरिक्त अनेकों ग्रंथ अकाल में ही काल कवलित हो चुके हैं। आदिकाल से ही अनेक विद्वान लेखकों ने अपनी बुद्धि वैभव व्यय करके इस विशाल ग्रंथ भंडार को भरा है, परंतु ऐतिहासिक ग्रंथों की कमी के कारण उन लेखकों का पूर्ण परिचय नहीं प्राप्त होता है। बाण विल्हड़ राजशेखर आदि कवियों ने अपने ग्रंथों में अपने वंश पांडित्य और आश्रयदाताओं के थोड़ा बहुत उल्लेख अवश्य किया है, पर उससे आधुनिक युग के पुरातत्व प्रेमी पाठकों को संतोष नहीं होता। फिर भी जिन्होंने अपने विषय में एक अक्षर तक नहीं लिखा, उनकी अपेक्षा इनका दिया हुआ अन्य परिचय भी ऐतिहासिक आधार के लिए सहायक ही है। विश्व के प्रायः समस्त प्राचीन और अर्वाचीन देशी एवं विदेशी विद्वानों ने सरस्वती के वरद पुत्र कविवर कालिदास की मुक्त कंठा से प्रशंसा की है और इनको कवि कुलगुरु की उपाधि से सम्मानित कर संस्कृत के कवियों में सर्वोच्च स्थान दिया है, किंतु इनके वंश जन्म चरित्र स्वभाव योग्यता आदि के बारे में जानने लायक विश्वसनीय सामग्री कहाँ उपलब्ध होती है। उनके शरीर त्याग के अनंतर ही उनके चरित्र की ऐतिहासिक सामग्री लुप्त हो गई और उनकी ऐतिहासिकता का स्थान बैसिल पैर की दंत कथाओं ने ले लिया। संस्कृत में बल्लाल कवि का भोज प्रबंध ऐसे ही मनगढ़ंत कथाओं का गठर है। काव्यकला की दृष्टि से इसकी शब्द योजना में भले ही माधुर्य हो, अर्थ वैशद्य में सौंदर्य हो, परंतु इतिहास की कसौटी पर वह खरा नहीं उतरता। भोज प्रबंध 16वीं शताब्दी की रचना है। यह कालिदास के बहुत वर्षों बाद लिखा गया था, अतः इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत कम है। इसमें सबसे आश्चर्यजनक तो यह है कि भिन्न कालीन कवियों को एक समय में तथा एक ही कतार मिलाकर बल्लाल कवि ने खड़ा कर दिया है। भोज के दरबार में कालिदास, भवभूति, भारवी, दंडी, बाण इन सबको समस्या पूर्ति करते पाएंगे। इन कवियों को आश्रयदाता धाराधीश भोज भी उक्त कवियों के कई सौ वर्ष बाद 11वीं शताब्दी में हुए हैं, जो उनके ताम्र पत्रों से सिद्ध हो चुका है। अतः पाठक स्वयं निर्णय कर लें कि कवियों के काल निर्णय करने में भोज प्रबंध कितना विश्वसनीय है। इस प्रकार परंपरागत विश्वसनीय सामग्री के अभाव में कालिदास के जन्म स्थान स्थिति काल तथा चरित्र के संबंध में अनेकानेक कल्पनाएं की जाती हैं। विभिन्न विद्वानों ने कालिदास के काल की दो सीमाएं मानी हैं। इन्होंने अपने मालविकाग्निमित्र नाटक का कथानक शुंग वंशी राजा अग्निहोत्र के चरित्र से लिया है। यह अग्निमित्र मौर्य वंश का उच्छेद कर मगध साम्राज्य को स्वायत्त करने वाले सेनापति पुष्यमित्र का सुयोग्य पुत्र था, जिसका समय ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व ऐतिहासिक विद्वानों ने निर्धारित किया है। अतः कालिदास का समय इसके पूर्व नहीं हो सकता। छठी शताब्दी में वर्तमान कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन अर्थात 606 से 647 ईस्वी के दरबार के महाकवि बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित की प्रस्तावना में कालिदास की कविता की भूरी भूरी प्रशंसा की है और पुलकेशिन द्वितीय अर्थात 634 ईस्वी के केहोल अभिलोक नामक ग्राम में प्राप्त शिला पर खुदी हुई प्रशस्ति में भी कालिदास को स्पष्ट उल्लेख है। इसके बाद भी कालिदास नहीं हो सकते। अतः कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच कहीं न कहीं होना चाहिए। इन दो सीमाओं के आधार पर कालिदास की स्थिति के संबंध में विभिन्न ऐतिहासिक विद्वानों ने तीन मत प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि कालिदास ने तो अपने संबंध में कहीं कुछ भी नहीं लिखा है और अपनी प्रतिभा के प्रकाश से विश्व को अलोकित करने वाले इस महाकवि ने अपना उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा। अपने स्थान और समय की बात को लिखना वे अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझते थे। अतिरिक्त इससे दूसरी बात यह है कि उन्हें यह आशा न थी कि मेरी कृतियों को लेकर कभी इतिहास के भव्य भवन का निर्माण होगा। यही कारण है कि अन्य मनुष्यों के समान कालिदास ने अपने निवास स्थान, समय तथा अपने आश्रयदाता के विवरण को नहीं प्रस्तुत माना। कालिदास के संबंध में प्रधान रूप से तीन मत उपस्थित होते हैं। पहला, कालिदास षष्ठ शताब्दी के महाकवि हैं। दूसरा, कालिदास गुप्त नरेशों के स्वर्ण युग में हुए थे। तीसरा, कालिदास की सत्ता ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी मानना आवश्यक है। नंबर एक, प्रथम मत। इतिहास में विक्रम उपाधिधारी चार राजाओं का उल्लेख पाया जाता है, जिनके समसामयिक होने के कारण कालिदास का समय विभिन्न शताब्दियों में मानना पड़ता है। डॉक्टर हार्नली मानते हैं कि यशोवर्मन ने बलादित्य नरसिंह गुप्त की सहायता से कारूर के युद्ध में हूण वंश के प्रतापी राजा मिहिर कुल को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी और अपने इस बड़े विजय के उपलक्ष्य में विक्रम नाम का एक नया संवत चलाया। इससे प्राचीन सिद्ध करने की इच्छा से उसने 600 वर्ष पहले से ही प्रचारित किया। कालिदास इन्हीं के सभा पंडित थे, अतः कालिदास का समय छठी शताब्दी है। यह नई कल्पना डॉक्टर फर्गुसन साहब के मस्तिष्क की उपज है। कालिदास के समय निरूपण के लिए डॉक्टर हार्नली ने भी इसका उपयोग करते हुए यह दिखलाया है कि यशोवर्मन की राज्य सीमा रघु के दिग्विजय प्रसंग में वर्णित राज्य सीमा से बिल्कुल मिलती जुलती है और एक आलोचक ने कुमार संभव की देव स्तुति के सांख्य सिद्धांत को छठी शताब्दी में लिखी गई ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका के आधार पर अवलंबित मानकर उसके आशय ग्रहण करने वाले कालिदास का समय भी छठी शताब्दी माना है। हरिप्रसाद शास्त्री ने कौतुकपूर्ण अनेक युक्तियों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कालिदास भारवी के बाद छठी शताब्दी में हुए थे। मैक्स मूलर का भी यही मत है कि कालिदास छठी शताब्दी में उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उसी समय भारतवर्ष में संस्कृत विद्या का पुनर्जीवन हुआ था। साहित्य, कला, विज्ञान आदि की दृष्टि से उत्तम युग था। इसमें पुराणों का अंतिम संस्करण और वैदिक धर्म का प्रचार हुआ था। ऐसे समय में इनका होना ज़्यादा संभव है।